ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है भगवद्गीता सार कार्यक्रम में, जिसमें आज हम भगवद्गीता का 10वां अध्याय ऐश्वर्य योग उसके ऊपर वर्णन करने वाले हैं। जब 9वें अध्याय का समापन होता है तो अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजि माम नमस्कुरु। तो ये श्लोक को सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु आपके प्रति मन, जो मन लगाना है वो कैसे लगाऊं, कैसे मैं आपको हर समय याद कर सकता हूँ। तो उस प्रश्न जो मन में अर्जुन की ये जो एक इच्छा जागृत हुई है, कहिए या संशय जागृत हुआ है, उसके जवाब हेतु भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय में स्वयं बोलना शुरू करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में विस्तार से बताएंगे। मतलब क्या है? पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, मैं सभी सृष्टि का निर्माण कारक हूँ या मुझसे निर्माण हुआ है। बड़ा प्रश्न ये बनता है, उस कृष्ण को इस सृष्टि में कैसे देखा जाए, उसके लिए 10वां अध्याय है। सो टू थिंग्स, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ द क्रिएशन, वो तो हमें पता है, बट हाउ टू सी कृष्ण विद इन द क्रिएशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस 10th चैप्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं 10वें चैप्टर से, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाचा भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। देखने वाली बात है, मैं तो कहूँगा सोचने वाली बात है। दो तीन प्रमुख चीज़ें हैं श्लोक के अंदर। सबसे पहली चीज़ है भगवान वाचा। आप लोगों ने ध्यान दिया तो जब भी व्यासदेव कहते हैं कि संजय ने बोला तो क्या लिखते हैं? संजय वाचा। जब अर्जुन की टर्न आती है तो क्या बोलते हैं? अर्जुन वाचा। और इस समय जब कृष्ण की बारी आती है बोलने की, तो कभी भी एक बार नहीं कहा कृष्ण वाचा, क्या कहा? हर बार भगवान वाचा। भगवान शब्द की परिभाषा क्या है और कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया बार बार? भगवान, वान मतलब पोजेस करना। किसको पोजेस करना? भग मतलब भाग्य को। जिसके पास विद्या होती है उसको कहते हैं विद्वान। उसी प्रकार भगवान, भगवान शब्द की परिभाषा पराशर मुनि विष्णु पुराण में देते हैं, कहते हैं ऐश्वर्यस्या समाग्रस्या वीरयस्या यशशाश्रिया ज्ञान वैराग्ययश्चैवा शनाभाग इतंगणा। तो यहाँ पे पराशर मुनि बोलते हैं भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। भगवान वो हैं जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से जिनके पास हों या पूर्णता से उनके पास हों। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? सबसे पहले तो ऐश्वर्य, स्वयं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समाग्रस्या वीर यश श्रिया, वीरता, यश मीन्स फेम, वीर यश श्रिया मीन्स खूबसूरती, ज्ञान वैराग्य का मतलब रेनाउंसिएशन। भगवान श्री कृष्ण के पास ये 6 गुण और ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, इसलिए कृष्ण को भगवान कहा जाता है। क्योंकि ये सार है तो मैं विस्तार से आपको उदाहरण दे नहीं पाऊंगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन सभी जो ये 6 ऑपुलेंसेस हैं उसमें पूर्णता से अपने आप को साबित करते हैं कि हाँ उनके पास सर्वश्रेष्ठ ये 6 ऑपुलेंसेस हैं। बट सारांश में, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, एक बार मिट्टी खाली थी तो माँ यशोदा बलराम जी की शिकायत कहने पे माँ यशोदा कृष्ण को कहती हैं, लाला मुँह खोल, कृष्ण कहता है, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह में देख लीजिए। कृष्ण ने सोचा नहीं था माँ यशोदा क्या कहने वाली हैं अगली बार, तो माँ यशोदा कहती हैं ठीक है ऐसा ही तो मुँह खोल के दिखा, क्योंकि कृष्ण तैयार नहीं थे इस सरप्राइज़ के लिए। तो जैसे ही उन्होंने मुँह खोला तो यहाँ माँ यशोदा को कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन दिलाए, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख मतलब बैली के अंदर था, पेट के अंदर। और अब 11वें अध्याय में जो आगे पढ़ेंगे भगवद्गीता में, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विराट रूप का दर्शन कराते हैं। तो सारांश तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने आप को स्वयं भगवान पहले कह चुके हैं, राइट, भोक्तराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वमाम शांति मृच्छति। ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है। उसी प्रकार 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं कृष्ण, मथ परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कोई नहीं है, मैं परम सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक चैप्टर में बार बार इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं ही परम ईश्वर हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर भगवद्गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान कौन है। केवल वो ही नहीं, आज इस 10वें अध्याय में अर्जुन स्वयं घोषणा करने वाले हैं कि भगवान कौन है। तो जब तक अर्जुन घोषणा नहीं करते तब तक उसका इंतज़ार करेंगे। उससे पहले मन में एक प्रश्न उठता है, इस भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, मतलब क्या है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में कि अर्जुन जितनी ये भौतिक शक्ति है मेरी शक्ति है, और जो जीवात्मा है वो भी मेरी ही शक्ति है। तो हम भगवान के इफेक्ट हैं, मतलब क्या है, भगवान हमारा कॉज है और हम उनके द्वारा उत्पन्न हुई उनकी शक्ति हैं। तो एक इफेक्ट अगर कॉज को जानना चाहे अपनी क्षमता के अनुसार कभी नहीं कर सकता, हाँ या ना। जैसे एक छोटा सा बालक अगर अपने पिता के बारे में खोजबीन करके रिसर्च करके ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढ सकता है, वो मुमकिन ही नहीं है। वो माता के माध्यम से पहचान सकता है कि परमपिता कौन है। इसी प्रकार एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, अर्जुन श्रुणु मे परमम वचाः, अर्जुन अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मुझसे सुनना ही पड़ेगा, या मेरे द्वारा प्रमाणिक गुरु उनके द्वारा अगर आप भगवद्गीता का ज्ञान प्राप्त करते हो तो आप तब मेरी दिव्यता के बारे में जान सकते हैं। आगे भगवान बहुत अनोखी चीज़ कहते हैं दूसरे श्लोक में। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे बारे में जानना इतना आसान नहीं है। और क्या कहते हैं कृष्ण, नामे विदु सुरगणः प्रभवम नाम महर्षिय अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। अर्जुन महान महान ऋषि और देवगण मेरे सत्य को नहीं जानते। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता है भगवान के सत्य को, अपनी रिसर्च अपनी खोज से कभी मुमकिन ही नहीं है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु अगर आपके बारे में और आपके इस परम ज्ञान के बारे में कोई जानता है तो उससे उसको क्या लाभ मिलेगा या उसका क्या फल होगा। भगवान 3रे श्लोक में और 7वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं, कहते हैं अर्जुन एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेति तत्वता, जो मेरे तत्व को समझता है जो मेरे ज्ञान को समझता है निश्चित रूप से मेरी भक्ति में लगेगा। प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं तात्पर्य में 7वें श्लोक के। प्रभुपाद कहते हैं बहुत लोग हैं जो कहते हैं गॉड इज ग्रेट, सुना होगा आपने भी कभी, पर उन लोग को ये नहीं पता भगवान कितने ग्रेट हैं। क्यों नहीं पता, ज्ञान की कमी के कारण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य का ज्ञान देना चाहते हैं ताकि अर्जुन के जरिए एक आम आदमी को भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान पता चले। और जब भगवान का ऐश्वर्य के बारे में ज्ञान मालूम होगा या पता चलेगा तो निश्चित ही रूप से व्यक्ति भगवान की शरण लेगा। इसलिए प्रभुपाद क्या, इनफैक्ट 7वें श्लोक में तो खुद भगवान कहते हैं व्यक्ति जब मेरे बारे में मेरा ऐश्वर्य जानेगा तो स्वाभाविक रूप से मेरी भक्ति करेगा। उसी बात को श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो सारांश क्या है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना प्रमाणिक गुरु भगवद्गीता जैसे माध्यम से तभी हमारी भगवान के अंदर श्रद्धा पैदा हो सकती है। कई बार देखा गया है, अगर हम लोगों से कहते हैं आइए भगवद्गीता का प्रोग्राम अटेंड करिए, तो लोग बोलते हैं भाई साहब सब सब जानते हैं, हम राम कृष्ण नरसिम्हा वामना वरा सब भगवान है, सब देवी देवता एक समान है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा। एक गांव के बाहर एक बहुत महान साधु रह रहे थे, तो गांव वालों की बहुत इच्छा थी कि उन साधु को अपने गांव में बुलाकर उनसे भगवान के बारे में कुछ प्रवचन सुने, पर वो साधु कभी भी किसी का भी इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो एक बार गांव के सभी लोगों ने चयन किया कि आइए हम सब जाकर इन साधु महात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए हमें थोड़ा तो भगवान के बारे में ज्ञान दीजिए। जब कई बार विनती करी तो साधु महात्मा मान जाते हैं। बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया गांव में, और जैसे ही वो साधु महात्मा पंडाल में पहुंचते हैं, बैठते हैं, और जैसे ही वो प्रवचन देने वाले होते हैं तो प्रश्न पूछते हैं और सभी गांववासियों से पूछते हैं, तो भाइयों बहनों ये बताइए आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? अगर भगवान में विश्वास करते हैं तो हाथ खड़ा करिए। सभी लोग परेशान हो गए, ये प्रश्न का मतलब क्या है, हाँ कहें या ना कहें? कुछ ना समझ आने के कारण लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। तो साधु कहते हैं, अरे ऐसी जनता के सामने बोलने का फायदा ही क्या, जिसका भगवान में श्रद्धा ही नहीं वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जनता बड़ी परेशान होती है, इतनी मुश्किल से तो आए थे, बिना कुछ कहे चले गए। तो फिर दोबारा मंथन होता है, निर्णय लिया जाता है। इस बार साधु महात्मा आते हैं, प्रश्न पूछा तो सभी दोनों हाथ खड़ा करके कहेंगे हाँ हाँ हमें पता है भगवान है। तो कई मेहनत के बाद वो साधु फिर आते हैं गांव में, और जो वहाँ अध्यक्ष होते हैं साधु को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर साधु से कहते हैं कृपा करके ज्ञानवर्धन करिए। और जैसे ही साधु प्रवचन देने के लिए तैयार होते हैं, फिर साधु पूछते हैं, तो भाइयों बहनों बताओ आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हो? सभी ने तुरंत दोनों हाथ खड़े कर दिए। तो फिर साधु महात्मा गांव के अध्यक्ष की तरफ देखते हैं, बोलते हैं सब कुछ तो जानते हैं, मेरी आवश्यकता क्या है, फिर चले जाते हैं। तो गांव के लोग बड़े परेशान होते हैं, अरे कि महात्मा चाहते क्या है, हाथ खड़ा करो तो परेशानी, हाथ ना खड़ा करो तो परेशानी। तो सोचते हैं अगली बार अगर महात्मा जी तैयार होते हैं, आते हैं प्रवचन देने के लिए, प्रश्न पूछेंगे, आधा क्राउड हाथ उठाएगा, आधा क्राउड हाथ नहीं उठाएगा, क्या पता इसी बहाने हमारे साधु महात्मा प्रवचन दें। तीसरी बार फिर आते हैं, फिर बैठते हैं मंच पर, फिर प्रश्न पूछते हैं कितने लोगों को भगवान में श्रद्धा है? आधे लोग हाथ उठाते हैं और आधे लोग हाथ नीचे रखते हैं। तो साधु बोलते हैं जिन लोगों ने हाथ उठाया था, आप लोग जिन लोगों को ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में उनको ज्ञान दे दीजिए, मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर उठकर चले जाते हैं। इस कहानी का सार क्या है? जैसे आपने देखा, जैसे जैसे सती परिस्थिति बदलती रही, उसी प्रकार इन गाँव वासियों का भगवान है या नहीं है उसमें श्रद्धा विश्वास बदलता रहा। है या नहीं है किसी को मतलब ही नहीं है, परिस्थिति के अनुसार उनका अगर आवश्यकता है आज भगवान में विश्वास करने की तो हाथ खड़ा कर दिया, अगर आवश्यकता नहीं है तो हाथ नहीं उठाया। तात्पर्य क्या है? ज्ञान की कमी में व्यक्ति इस प्रकार जीवन में आने वाली परिस्थितियों में अपना निर्णय, अपनी श्रद्धा बदलता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सबको ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान संपूर्ण रूप से होना चाहिए। और इसीलिए अर्जुन मैं तुम्हें अभी चतुर्श्लोकी भगवद्गीता सुनाने वाला हूँ। भगवद्गीता के सबसे महत्वपूर्ण चार श्लोक, श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 11 तक, आइए इसका वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 8, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मथा सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विताः। हे अर्जुन, मैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं भौतिक प्रकृति हो या आध्यात्मिक जगत, दोनों का निर्माण, दोनों का कारक मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो व्यक्ति इस तत्व को जानता है, सत्य को जानता है, निश्चित रूप से मेरी भक्ति करता है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये श्लोक देता है। पहली चीज, ये श्लोक हमारा संबंध ज्ञान, भगवान के संग संबंध जोड़ता है। बताते हैं कि कृष्ण भगवान है और जीव भगवान का सेवक। इस प्रकार सबसे पहले तो जीव का भगवान के संग रिश्ता क्या है वो निर्धारित किया जाता है। भगवान परम पिता है और हम सभी भगवान के अंश हैं। अगर हम सभी भगवान के अंश हैं, ये पुरुष स्त्री जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उस मतभेद का क्या मतलब बनता है? मैं गोरा हूँ वो काला है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या बनता है? अगर ये ज्ञान किसी को मिल जाए तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्थापना करता है। उदाहरण के रूप में शिला प्रभुपाद एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पे सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी के चर्च में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के अंत में एक व्यक्ति जो चर्च में रेगुलरली आता था उसने हाथ उठाया और प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी आपका सेंट फ्रांसिस के बारे में क्या कहना है। प्रभुपाद ने अपने शिष्य से पूछा कि सेंट फ्रांसिस कौन थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी। उनके शिष्य प्रभुपाद को बताते हैं सेंट फ्रांसिस की फिलॉसफी थी ब्रदर सन सिस्टर मून, मतलब वो सभी जीव जंतु को अपना भाई और बहन के रूप में देखते थे। जैसे ही प्रभुपाद से सुनते हैं प्रभुपाद की आंखों में आंसू आते हैं और प्रभुपाद बोलते हैं, ओ सेंट फ्रांसिस ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तात्पर्य क्योंकि वो व्यक्ति सभी जीव जंतु को अपना भाई अपनी बहन मित्र के रूप में देख सका, क्यों, क्योंकि वो जानता था सब जीवों का मालिक एक परम पिता। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु जो इस ज्ञान को जानते हैं तो अर्जुन पूछते हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसका भगवान 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं और कहते हैं, अर्जुन ऐसे लोग जो इस बात को जानते हैं वो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। मच्चित्ता मत कथा प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। जो मेरे भक्त होते हैं जो इस ज्ञान को जानते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ परम पिता हूँ, मच्चित्ता अपने चित्त अपने मन से सदैव मेरी पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख कथयंतश्च माम नित्यम बोधयंत परस्परम, मेरा गुणगान दूसरों से श्रवण करके मेरे बारे में और दूसरों को मेरी कथा सुनाकर, इस प्रकार उनके जीवन में हमेशा वो सुख और आनंद का एहसास करते हैं। इस श्लोक का हमारे जीवन से क्या अर्थ है और क्या मतलब है? हमें अपने जीवन में शिला प्रभुपाद के द्वारा जो चार बेसिक नियम है उसका पालन करना चाहिए, जो है ABCD फॉर्मूला, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट। साधुओं का संग डेली लेना चाहिए, मतलब भक्तों का संग। बी फॉर बुक्स डेली भगवद गीता श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सी फॉर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करना चाहिए। डी फॉर डाइट कृष्ण प्रसादम, जो भी वेजिटेरियन आप खाएं कृष्ण प्रसादम खाएं, और खाएं तो वेजिटेरियन ही खाएं, दैट्स अ पॉइंट। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा नरसिंह मेहता की, जिस स्टोरी का आने वाले अगले दो श्लोकों से भी कनेक्शन है। आपको आने वाले अगले दो श्लोक आसानी से समझ आएंगे। नरसिंह मेहता गुजरात में रहते थे, भगवान के बहुत महान भक्त थे, शादीशुदा थे, उनकी बच्ची भी थी, पर वो मधुकारी करके अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। बच्ची की शादी की उम्र हो चुकी थी, पत्नी बड़े क्लेश मचा रही थी कि बेटी की शादी की उम्र हो गई, कोई लड़का ढूंढिए। तो फाइनली उनकी लड़की से शादी करने के लिए एक परिवार आता है, शादी तय हो जाती है, 5 दिन के बाद की डेट तय होती है, पर घर में कोई भी प्रयोजन नहीं है लड़की की शादी करने के लिए। माँ बड़ी दुखी होती है, अपने पति से कहती है, तुम कैसे आदमी हो, भगवान का नाम जब जपते रहते हो दिन रात, बेटी की शादी कैसे करोगे, घर में खाने के लिए नहीं है, बेटी के लिए कपड़े नहीं है, हमें लोगों को खिलाना है, कितना सारा प्रयोजन करना है, क्यों नहीं किसी से मदद मांगते हो, कृपा करके जाइए मदद मांगिए। नरसिंह मेहता घर से बाहर जाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव में पहुँचते हैं, 2 दिन ऐसे निकल जाते हैं, 3रे दिन जब पहुँचते हैं तो एक गाँव में भगवत सप्ताह चल रहा होता है। नरसिंह मेहता का श्रवण और अध्ययन और भागवतम से इतना प्रेम था, जैसे ही भगवत सप्ताह के बारे में सुनते हैं वहीं जाके बैठ जाते हैं। भगवत सप्ताह मतलब 7 दिन की कथा, वो पहले दिन था जिस दिन वो पहुंचे थे, वो भगवत सप्ताह सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि 7 दिन बीत जाते हैं। जब भगवत सप्ताह खत्म हो जाती है, पंडाल उतर जाता है, तब उनको होश आता है, अरे भाई मैं तो शादी के प्रयोजन के लिए बाहर निकला था। तो किसी से पूछते हैं तारीख क्या है, जो तारीख बताते हैं तो पता चलता है शादी उनकी बेटी की 3 दिन पहले थी। नरसिंह मेहता का तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, भागे भागे गांव में आते हैं, उनको बड़ा भय था आज तो बहुत पिटाई पड़ेगी, अब तो सारी की सारी सीमाओं को मैंने पार कर दिया। जैसे ही गांव में वापस भागे भागे आते हैं, जितने भी गांव वाले उनसे मिले उनको मुस्कुरा के बोले, नरसिंह मेहता क्या बात है तुम्हारी। फिर वो आगे जाते हैं तो घर की तरफ पहुंचते हैं, तुमको समझ नहीं आता क्यों मेरी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं बार बार। घर की तरफ जाते हैं, दिल धड़क रहा है, बड़े गंभीर है, क्या होगा, घर पे जाके मेरी बेटी की शादी होनी थी, मैं था ही नहीं, घर पे जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, पत्नी आती है, चेहरे पे बड़ी मुस्कान होती है। नरसिंह मेहता परेशान होते हैं, कोई गाँव वालों ने षड्यंत्र रचा है मुझे घर में फंसा के पीटने वाले हैं क्या? दरवाज़ा खुलते हैं, नरसिंह मेहता घबराते हुए अंदर जाते हैं, देखते हैं लड़की घर में नहीं है। और उनकी पत्नी बड़ी खुश होकर बोलती है, आज आपने तो इतना अच्छा काम किया। नरसिंह मेहता घबराते हैं, अरे सच बताओ क्या हुआ, कैसे मेरी बेटी की शादी हुई? सब लोग कह रहे हैं इतनी अच्छी मेरी बेटी की शादी हुई, बताओ क्या हुआ। तो बोलते हैं, जब आप गए थे, आपके जाने के 2 दिन बाद ही 11 साल का एक बहुत खूबसूरत बालक दरवाजे पे खटखटाता है, बोलता है गोसाई ने भेजा है, नरसिंह देव ने भेजा है, उसने अपने कंधे पर इतना सारा धन राशि कपड़े वस्त्र इतने सब कुछ लेकर आया था कि उस सब से इतने धूम धड़ाके से शादी हुई है कि गांव वालों ने कहा कि आज तक ऐसी शादी इस गांव के लोगों ने कभी नहीं देखी है। मतलब क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मेरे भक्त अपनी जीवन शैली कैसे व्यतीत करते हैं, तो भगवान फिर अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन तो मैं भक्तों के संग क्या करता हूँ? और क्या करते हैं? भगवान कहते हैं 10वें और 11वें श्लोक में कि जो भक्त मेरे चिंतन में लगा होता है, मैं उसकी सारी चिंताएं हर लेता हूँ। यही उदाहरण नरसिंह मेहता का एक छोटा सा उदाहरण जो हमें सिखाता है। आइए देखते हैं 10वें और 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। अर्जुन, जो सदैव मेरी भक्ति करने में लगा है, प्रेम पूर्वक मैं उसको वो बुद्धि देता हूँ ताकि जिससे वो मेरे पास आ सके। जैसे एक पिता एक छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं और सफलता की ओर लेके जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, 11वें श्लोक में तो कृष्ण कह डालते हैं, अर्जुन तेषाम् अनुकम्पार्था अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भासत। अर्जुन, मैं अपनी कृपा से उसके मन में बैठे हुए जितना भी अंधकार होता है अज्ञानता के कारण ज्ञान रूपी दीपक से उस अज्ञान को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी संहार या सर्वनाश नहीं होता। तो सारांश में जो 4 श्लोक हैं जिसका हमने वर्णन करा, ये एक अध्यात्म जीवन का रोड मैप दिखाते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक, पहला श्लोक भगवान के संग संबंध क्या होता है, दूसरा श्लोक जिसको अभिधेय कहा जाता है प्रैक्टिस, एक भक्त का जीवन शैली कैसा होना चाहिए, और फिर तीसरा और चौथा श्लोक प्रयोजन, भक्ति करने का फल क्या है जहाँ भगवान की सुरक्षा और संरक्षण मिलती है। जब अर्जुन ये सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और जोर से बोलते हैं, प्रभु मैं कोई घोषणा करना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं, करो भाई, तुम भी घोषणा कर लो, कोई बात नहीं, क्या घोषणा करनी है तुम्हें? तो अर्जुन कहते हैं 12वें और 13वें श्लोक में, परम ब्रह्म परम धामा पवित्राम परमा भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने प्रत्यक्ष अनुमान दोनों ही प्रमाण के रूप से मैं घोषणा करता हूँ परम ब्रह्म परम धामा कि कृष्ण ही वो परम पिता परम भगवान है। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं केवल अपने प्रत्यक्ष, क्योंकि मैं आपको अपनी आंखों के सामने अपनी सोच से समझ कर नहीं कह रहा, मैं शब्द प्रमाण के रूप में भी कह रहा हूँ। कैसे शब्द प्रमाण के रूप में? तो 13th श्लोक में कहते हैं अर्जुन, आहुस्त्वाम ऋषये सर्वे देवश नारदस्तथा आसितो देवा लो व्यासा स्वयं चैवा ब्रवीषि में। प्रभु केवल ये मेरा ही निर्णय नहीं है, ये मैंने सुना भी है, असितो देवाल व्यास नारद मुनि जैसे महान संतों ने सबने घोषणा करी है कि आप ही परमपिता हैं। और महाभारत में अनेक अनेक कहानियां, अनेक अनेक इंसिडेंट्स आते हैं, चाहे वो राजस्वीय यज्ञ क्यों ना हो, जहां समस्त सभा में भीष्म पितामह कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। अगर एज के अनुसार देखा जाए तो भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से कम 2 जनरेशन पहले आए थे, फिर भी भीष्म पितामह कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। इसके बाद आगे 14वें 15वां और 16वां श्लोक तक करते हैं। अंत में अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैं आपके ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में जानने के लिए बड़ा ही इच्छुक हूँ, ताकि मैं अपना मन आपके ऊपर सदैव केंद्रित कर सकूँ, साथ ही साथ आपको इस भौतिक दुनिया में हर समय में देख सकूँ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रार्थना को सुनकर अर्जुन की इच्छा को पूर्ण करते हैं और श्लोक संख्या 19 से लेकर श्लोक संख्या 42 तक भगवान श्री कृष्ण अपने 82 ऐश्वर्यों के बारे में वर्णन करते हैं। उसका तो समय नहीं रहेगा विस्तार से चर्चा करने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। भगवान सारांश में ही बताते हैं, आप दुनिया में कोई भी ऐश्वर्य देखते हैं, कोई भी विभूति, वो सब मेरे ही कारण है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण 42nd श्लोक में कहते हैं, अर्जुन इस सब का क्या फ़ायदा, इस सब ज्ञान का, ये सब ऐश्वर्य जो मैंने बताए हैं, तो ये तो मेरे छोटी सी शक्ति का उदाहरण है। मेरी शक्ति तो असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे समय व्यर्थ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप कृपा करके प्रामाणिक गुरु के शरण में रहते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करिए। समय के साथ भगवान आपको संपूर्ण ज्ञान वैसे भी अपने आप दे ही देंगे। इसी प्रकार ये 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, चतुर्श्लोकी भगवद्गीता के बारे में बताते हैं। और अब कल 11वां अध्याय, जहाँ पे अर्जुन कहेगा, प्रभु मन नहीं भरा, आपने सुनाया है पर मैं देखना चाहता हूँ, कृपा करके एक लाइव शो दिखा दीजिए कि जब आपके पास ये सारे ऐश्वर्य होते तो आप दिखते कैसे हैं। तब यहाँ पे विराट रूप का लाइव प्रेजेंटेशन होगा अगले एपिसोड में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।